Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, पिछले दिनों आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि तमिलनाडु का एक 11 वर्षीय बच्चा जो दृष्टिहीन है, पांचवी कक्षा का छात्र है, उसने टेलीविजन में न्यूज रीडिंग की ब्रेल लिपि के द्वारा। इस घटना से उसके माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए और जिन्होंने देखा वो भी बहुत बहुत प्रसन्न हुए और भावुक भी हुए कि एक दृष्टिहीन बच्चा अपनी लगन से, अपने जज्बे के आधार पे इतनी कम उम्र में कैसे समाचार वाचन कर सकता है। ये कोयम्बटूर की घटना है मित्रों, जहाँ पे न्यूज चैनल है विशेष करके, जिसका नाम है लोटस, जिसमें उसने ये न्यूज रीडिंग 22 मिनट तक की। और न्यूज चैनल को भी हमें विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने ऐसे बच्चों को भी प्रोत्साहित किया है। बात आती है मित्रों अपने जज्बे की, अपनी उमंग की। जब उसने ये कहा, उसे पूछा गया कि तुमने इसे अपने धंधे के रूप में क्यों चुना है, तो उसने कहा कि यदि मैं लोगों को नहीं देख पाता हूँ तो लोग तो कम से कम मुझे अवश्य देखें ना। बात भी कितनी प्रेरक है ना। यदि हम अपनी लगन के आधार पे, हौसले के आधार पे आगे बढ़ते हैं तो कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं रहता। विशेष करके आज की शुरुआत मैंने इसलिए की क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कई कमियां, शारीरिक कमियां या मानसिक कमियां हमारे अंदर रहती हैं, बुराइयों के रूप में भी रहती हैं, और उनके कारण हम अपने आप को दीनहीन समझने लगते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन यदि उन कमियों को भी योग्यता और विशेषता में तब्दील कर दी जाए तो निश्चित रूप से हम शिखर पर पहुंच सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा मित्रों, क्योंकि कोई भी कार्य संसार में असंभव नहीं है। भगवान ने हमें संसार में बहुत श्रेष्ठ कार्य करने के लिए भेजा है। इस सुंदर प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया
भ्राता जी। एक बहुत ही प्रेरक बात लगी मुझे कि कोई भी शारीरिक कमी हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में बाधक नहीं बन सकती यदि अंदर उमंग और उत्साह।
बिल्कुल, दो ऐसे सुंदर घटनाएं विदेशों की आपने अखबारों में पढ़ी होंगी। एक व्यक्ति जो जिसके दोनों पैर ही नहीं हैं, लेकिन उसने फोटोग्राफी में इतने जबरदस्त काम किए कि उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला। और दूसरा व्यक्ति ऐसे ही जिसको दोनों हाथ नहीं थे, उसने पैरों से कूची पकड़ कर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग की और वो भी बेस्ट पेंटर बना है, आर्टिस्ट बना है। तो ये सत्य है कि कोई भी शारीरिक कमी मनुष्य के टैलेंट्स को या उसको टैलेंटेड होने से रोक नहीं सकती है। बात केवल दृढ़ता की है, हार न मानने की है और निरंतर अपने कार्यों में सफल होने का एक जज्बा, एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस, इन सब के आधार पे मनुष्य हर कमी को पार करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है।
बिल्कुल, ये सारे लोग बहुत प्रेरक हैं भ्राता जी। श्री रामानुजन इनका नाम है और सचमुच कई बार बचपन से भी कई लोग कुछ कुछ जिसकी दृष्टि नहीं है, कई ऐसे शब्द बोल देते हैं जो नहीं बोलने चाहिए। कई बार हम अपाहिज जो हैं, शब्द खैर ये भी अच्छा नहीं है, शारीरिक रूप से कोई कमी है, कोई ऐसे शब्द बोल देते हैं लोग जो आसपास के लोग, मन बहुत खिन्न होता है और लगता है कि शायद हमसे जीवन में कुछ होगा नहीं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे
भाई? हम अपने यहाँ देखते रहते हैं और भी बाहर जाते हैं देखते हैं, कई लोग व्हील चेयर पे रहते हैं, देखते हैं उनके पैर ध्यान से तो पैर बिल्कुल डेड है, पोलियो हो गया था, डेड है, लेकिन वो बहुत एक्टिव है। हमारे यहाँ शांतिवन में, आश्रम में भी ऐसे दो चार लोग हर रूप में आते ही रहते हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूँ तो वो बड़े खुश रहते हैं कि कोई नहीं, पैर नहीं है, गाड़ी मिली है, हम बहुत खुश हैं और अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो सब्जी काटने आ जाते हैं लोग किचन में, ऐसे लोग अपनी गाड़ी पे ही उनके आगे टेबल रख दी जाती है, एक घंटा दो घंटा सब्जी काट के जाते हैं। मनुष्य में कुछ करने की तीव्र इच्छा हो, कोई भी चीज निराश न करे कि भाई मुझे एक हाथ नहीं है, निराश हो गए, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते। इवन ये तो बड़ी बात है, किसकी एक अंगुली कट जाए वो उसे भी छुपाते रहते हैं, कुछ पहन लेते हैं कि लोग देख न ले, इसकी जरूरत नहीं, सबको देखने दो और अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ तो फिर अंगुली नहीं देखेंगे लोग, योग्यताओं को देखेंगे। तो ये सत्य है कि जहाँ कुछ करने की लगन हो, क्योंकि बुद्धि तो है ही, जो इस तरह से नेत्रहीन होते हैं ना, उनकी बौद्धिक शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है, सेंसिटिव बहुत होते हैं वो, ग्रहण शक्ति बहुत तेज होती है। इसका एक कारण है कि मनुष्य की बहुत सारी इनर पावर उसके नैनों से बाहर निकलती है। वो न जाने क्या क्या देखता है सारा दिन, और जो कुछ देखता है उस पर उल्टा सुल्टा सोचता है, इससे उसकी इनर पावर नष्ट होती रहती है। लेकिन जिसकी आंखें ही बंद हैं, वो कुछ नहीं देखता, तो उसकी सारी इनर पावर्स स्टोर्ड हैं, एकाग्र हैं, और वो जिस दिशा में उनको लगाना चाहेगा वो एकजुट होकर लगेंगी। इसलिए आप देखेंगे नेत्रहीन लोग अच्छे गायक, अच्छे म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे देश में तो, और उनका बड़ा बड़ा नाम है। इसलिए मैं सबको कहूंगा, क्योंकि बहुत लोग इस तरह से हैं कि किसी को कानों से सुनता नहीं है, तो कोई बोलता नहीं है, किसी को एक टांग नहीं है, हाथ नहीं है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। बुद्धि तो है, बस मुख्य चीज ये है, भाग्यवान है वो सब जिसके पास बुद्धि सालिम है, अच्छी है, परफेक्ट है, और उन्हें उसका उपयोग करके उन लोगों से आगे निकल जाना चाहिए, और निकलते हैं जो हर तरह से ठीक ठाक है।
जी भ्राता जी, लेकिन कई बार ऐसा मुझे लगता है कि थोड़े लोग ऐसे एग्जाम्पल बनते हैं, सभी को ऐसा होना तो अवश्य चाहिए, लेकिन जो मैं बात कह रहा था भ्राता जी, जब लोगों की कमेंट्स बहुत आते हैं, एक तो मैं खुद बहुत ही हताश हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ। मैं हताश निराश ना हूं, लोगों की बातें मुझ पर असर ना करें, एक बार। और दूसरे ऐसे भी लोग जो ऐसे देखें कि प्राकृतिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई ऐसे अपंग है, किसी की का कोई अंग विकसित नहीं है, वो भी जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उन दोनों के लिए मैं चाहूंगा कि आप कुछ प्रकाश दें।
बिल्कुल, यही घरों में, पहले घरों की मैं बात करूं, घरों में ही ये सबसे खराब बात होती है कि घर में ऐसे व्यक्ति को लोग, मान लो उसे थोड़ी सी गलती हो गई तो ऐसा वैसा बोलना प्रारंभ कर देते हैं। अब गलती तो अच्छे लोगों से भी होती है, लेकिन उससे कोई हो गई तो ज्यादा बोलेंगे और नाम ही रख देते हैं कुछ भी, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। इससे मनुष्य में हीन भावना जागृत होती रहती है और उसके जो अच्छे टैलेंट्स विकसित होने चाहिए वो दबकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए परिवारों में ये चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति को एनकरेज करे, उसे कार्यों में लगाए, उसे निथल्ला न छोड़ दे। जो योग्यताएं उसमें जागृत हो सकती हैं, अगर वो पढ़ सकता है तो पढ़ाया जाए, वो कोई और काम सीख सकता है, वो सीखने के लिए उसको फ्रीडम दी जाए, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए सबको। और भी देखने वाले, मान लो कोई ऑफिस में कार्यरत है व्यक्ति, उसको एक टांग नहीं है या दोनों टांग नहीं है, कार्य करने में वो बहुत होशियार हो सकता है, वो अच्छा अधिकारी बन सकता है, तो लोगों को भी उसको एनकरेज करना चाहिए और उसको भी स्वयं में ये पक्का कर लेना चाहिए कि मुझे किसी की बात सुनकर अपने को निराश नहीं करना है। मान लो किसी को नेत्र नहीं है और लोग उसे बार बार कहते हैं तुम तो अंधे हो, तुम क्या करोगे, तो मुस्कुरा देना चाहिए कि ठीक है, मेरे को नेत्र नहीं है तो लोग तो बोलेंगे ही कुछ ना कुछ, लेकिन मेरे को अपना तीसरा नेत्र तो है, बुद्धि का तीसरा नेत्र मेरा बहुत सुंदर है, उसको मैं ऐसा विकसित कर लूं कि ये सब चमत्कृत हो जाए। तो इस तरह की भावनाएं दोनों ओर से होनी चाहिए, तो ये जीवन भी सुंदर रूप से उनका व्यतीत हो जाएगा।
बिल्कुल, मतलब कोई कमेंट्स ऐसे लोगों के लिए ना किए जाएं, और हम भी यदि कोई कह देता है तो मन में ना।
दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, देखिये बचपन में ही हमारे यहाँ एक दादी थी, जब हम छोटे थे हमने किसी बीमार व्यक्ति को हंस दिया, वो सीरियस हुई और हमें उसने सीरियस शब्दों में कहा किसी बीमार व्यक्ति को हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी अपने को भी आ जाती है। अभी ये बात एक ऐसे ढंग से कही गई थी कि हमें ये रियलाइज हुआ कि नहीं, किसी बीमार व्यक्ति को हंसना नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को बार बार बुरा बोलते हैं तो ये संभव है किसी काल में हमें भी उन चीज़ों से गुजरना पड़े, इसलिए भी इनसे बचना चाहिए और ऐसे लोगों को ज़्यादा प्यार देना चाहिए, ज़्यादा एनकरेजमेंट देनी चाहिए, ज़्यादा कुछ सिखाने के लिए, सहयोग देने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
कई लोग इसे इस रूप में भी, जो धर्म और आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, इस रूप में कहते हैं कि शायद आपने बहुत पाप कर्म किए होंगे इसलिए आपको ऐसी सजा मिल रही है, तो ये सुनना भी लोगों को बहुत भारी लगता है। तो ऐसे में क्या कहेंगे भ्राता जी, क्या सचमुच ये ऐसा है कि पाप कर्मों के परिणाम से ही ऐसा हुआ है, या वर्तमान में माता पिता की किसी कमी के कारण, कुछ अनुवांशिक रोग के कारण ऐसा हो गया?
देखिए, जिस मनुष्य के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये तो सत्य है कि उसके कोई ना कोई कर्म ही उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन हम पिछले कर्मों को गिनाएं क्यों, याद क्यों दिलाएं? वो तो सबके ही कुछ ना कुछ बुरे थे, कोई अच्छा व्यक्ति होकर भी सुख नहीं पा रहा है, तो किसी को एक टांग होकर भी हिमालय चढ़ रहा है, एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, किसी को दोनों आंखें हैं तो भी वो अच्छा नहीं देख रहा है, लेकिन किसी को एक आंख है और वो सबकी अच्छाई देख के अपने को महान बना रहा है। तो हम इन कर्मों का गायन न करें, हम वर्तमान में अपने को आगे बढ़ाएं। और ये चीज भी बार बार किसी को कहनी नहीं चाहिए। यद्यपि ये सत्य है, जो बात है कि कर्म के आधार से ही सब कुछ मिलता है, लेकिन जो मिल गया सो मिल गया, पिछले कर्मों को तो कोई चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसे व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भविष्य भी बहुत सुंदर हो।
बिल्कुल, मतलब टोका टाकी इस रूप में ना की जाए ताकि व्यक्ति और ज्यादा परेशान हो। और दूसरा एक पॉजिटिव पहलू ये रहता जी कि अब जैसे न्यूज चैनल ने ही ऐसे लोगों को भी आगे किया है, आप लोगों को भी क्या संदेश देंगे जो इस प्रकार से जो अपंग हैं, मान लीजिए शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कमी रह गई है, वो भी चाहते हैं कि वो उड़ें, आगे बढ़ें, विकसित हों, शिखर पे पहुंचें, समाज को भी कुछ विशेष जिम्मेवारी लेनी चाहिए?
बिल्कुल, मैं सबको कहूंगा कि ऐसे लोग हर जगह होते ही हैं, एक दो
जी,
ऐसे ज्यादा नहीं होते, एक दो होंगे, अच्छे लोग होंगे 1000। इन सबको उन्हें हर तरह से मदद करनी चाहिए, अपना प्यार देना चाहिए, अपनी गुड विशेष देनी चाहिए, और जिस तरह भी उन्हें सहयोग दिया जा सके देना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा अगर उनको आर्थिक तंगी भी है तो, और वो कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो उन्हें मदद करके उस कार्य को करने में पूरा सहयोगी बनना चाहिए। उसको तो ये मदद मिलेगी ही, लेकिन करने वाले का भी बहुत बड़ा पुण्य जमा होगा जो उसके लिए एक बहुत बड़ी पूंजी होगी। मैं सदा ही ये बात कहता हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे अनुभव हो गए हैं सबको देखकर कि पुण्य ही मनुष्य की बहुत बड़ी पूंजी है, पुण्य ही मनुष्य के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, पुण्य का बल समय पर बड़ी बड़ी विपदाओं से मनुष्य को पार करने में बहुत बड़ी मदद करता है। तो ऐसे लोगों को जो किसी भी तरह से असहाय हैं, मदद करने से हमारा भी पुण्य बहुत जमा होता है। और मैं तो ये कहूंगा जो ऐसे लोगों को मदद करते हैं उन्हें किसी भी जन्म में ऐसी परिस्थिति से गुजरना नहीं पड़ेगा
जी, और उनकी दिल की भी दुआएं मुझे लगता है बहुत मिलेंगी, क्योंकि जरूरतमंद की मदद करने से उनकी जो दुआएं हैं बहुत काम करती हैं। चलिए भ्राता जी, मैं मेल्स की ओर लिए चलता हूँ अब आपको। ये पहला मेल हमें विजया जी ने भेजा है और ये कहती हैं कि ओम शांति भ्राता जी, मैं बाबा के विद्यालय से लगभग 2.5 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरे सामने कई समस्याएं आ रही हैं, पति के द्वारा भी, परिवार के द्वारा भी, और साथ ही जो मेरे सहकर्मी हैं उनके द्वारा भी। इनसे मैं कई बार बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, कृपया बताएं कि इन सभी समस्याओं से मैं कैसे मुक्त हूँ।
इन समस्याओं में रहते हुए इसको अपने मनोबल को कमजोर नहीं करना चाहिए और ये संकल्प रखना चाहिए कि कलयुग के इस भयानक काल में हर व्यक्ति को इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता ही है, इसलिए ये परीक्षाएं हैं और मुझे इनमें मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करने हैं। भगवान जो पढ़ाने आया है उसकी प्रैक्टिकल यही परीक्षाएं होती हैं। दूसरी चीज, इन्हें अपने को डीपली ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि कहीं इन परीक्षाओं का कारण मेरी कोई अपनी कमी तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। कभी कभी मनुष्य दूसरों को तो दोष देता रहता है लेकिन वो स्वयं कुछ गलत राह पे चलता है जिसके कारण लोग कमेंट्स करते हैं या बुरा बोलते हैं या कोई पेपर उसके सामने लाके खड़ा कर देते हैं। जैसे मैंने कई लोगों को देखा हो, बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, उनमें योग्यताएं कम लेकिन वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको डाउन कर देना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि वो क्या गलती कर रहा है, लेकिन अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लोग उसे सहयोग नहीं देंगे, निंदा भी उसकी करेंगे और उसके मार्ग में बाधाएं भी डालेंगे। तो दूसरी चीज ये ध्यान रखनी चाहिए कि हम तो कहीं गलती नहीं कर रहे हैं। और तीसरा जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, मैं उस पर ध्यान दिलाऊंगा, रोज अमृत वेले उठकर बहुत अच्छा योग अभ्यास, बहुत अच्छी परमात्मा से वार्तालाप करनी चाहिए और अपने को स्वमान देकर जगाना चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं परमात्मा की संतान, एक महान आत्मा हूँ, मुझे तो सबको गुड वाइब्रेशंस देने हैं। इस तरह से अपने लेवल को ऊंचा उठाएं तो इनके अच्छे वाइब्रेशंस दूसरों को जाएंगे और दूसरों की ओर से जो कुछ ये हो रहा है वो कम हो जाएगा। साथ साथ एक सुंदर प्रैक्टिस जो मैं सबको सिखाता हूँ और बहुत सुंदर उसके रिजल्ट हैं, हमारे सभी सुनने वाले देखने वाले उसको प्रैक्टिस जरूर करें सवेरे उठकर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और ये सभी आत्माएं मेरे गुड फ्रेंड हैं, ये बहुत अच्छी फीलिंग करे 5 बार, तो क्या होगा कि जो निगेटिव वाइब्रेशंस जा रहे हैं ना हमसे, उनको ओ ये मुझे तंग करते हैं, ये तो मुझे आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, ये मेरे शत्रु हैं, ये हट जाए मार्ग से तो मैं बिल्कुल आगे बढ़ जाऊं। ये जो निगेटिव वाइब्रेशंस उनको जा रहे हैं ना, ये उनको और मोटिवेट कर रहे हैं विघ्न डालने के लिए। इसलिए दे आर माई गुड फ्रेंड, दे आर वेरी गुड पर्सन, ऐसे संकल्प रोज सवेरे, इसमें एक दो मिनट लगेगा बस, ऐसे कर देने से बहुत जल्दी अनुभूति होगी कि उनके एटीट्यूड्स, उनके व्यवहार बदल जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
मतलब परिवर्तन रहता जी हमें खुद में ही लानी होगी, जिसके माध्यम से हम सामने वालों को बदल सकेंगे, क्योंकि कई बार सिचुएशंस को हम दोष देते रहते हैं और संभव है कि कई बार वो कारण होते भी हों, लेकिन खुद का परिवर्तन ज्यादा आवश्यक है।
मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा
जी,
कई बार दूसरों की ओर से वैसी बातें होती भी नहीं, लेकिन हमारी ज्यादा सोचने की आदत भी हो जाती है, हम ज्यादा सेंसिटिव बन जाते, किसी ने हमारी ओर देखा और हम यही कहेंगे देखा घूर रहा है, पता नहीं इसके मन में क्या है मेरे लिए, तो वो बेचारा ऐसे ही देखा होगा, नॉर्मली कोई व्यक्ति आता जाता है हम उसे देख लेते हैं ना, तो हमें इतना सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए कि हम हर बात को विघ्न मान लें, थोड़ा अपने को लाइट भी करना है और पावरफुल भी करना है, तो हमें लगेगा कि बहुत सारी चीजें जिनको हम विघ्न मान रहे थे वो तो विघ्न है ही नहीं।
बिल्कुल, मतलब इस परिवर्तन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रथा जी, एक हमारे पास दूसरा मेल आया है, ये कहती हैं कि मैं एक अनमैरिड लड़की हूँ, सर्विस करती हूँ और मेरे पेरेंट्स का मुझे इसमें बहुत सपोर्ट है कि मैं जब तक मुझे अच्छा लड़का नहीं मिलता है तब तक मैं शादी नहीं करूँगी, ये बात वो मेरी मानते हैं और इसे सहमत भी हैं, लेकिन हमारी जो बहुत सारी सहयोगी हैं और साथी संबंधी हैं वो इस बात को लेकर के बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते हैं, मुझसे भी कहते हैं और मेरे पेरेंट्स से भी कहते हैं कि ये शादी क्यों नहीं कर रही है, देखने में तो अच्छी है, क्या लड़का नहीं मिल रहा है, आदि आदि इत्यादि। ये सारी बातें कई बार मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और मेरे पेरेंट्स भी इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में कृपया बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक अच्छे लड़के की तलाश में हूँ, मिले तो ज़रूर मैं शादी करूँगी, अन्यथा मैं सिंगल रहना पसंद करूंगी।
और भगवान से शादी कर ले तो कितना अच्छा हो, जैसे उमा ने, पार्वती ने शंकर जी को ही चुन लिया था ना, लोग भी कहते थे क्या ये काला कलूटार, भूत भूत जैसा लगता है, राख लपेटे देता है और ये जंगलों में रहता है, तुम राजकुमारी और इससे शादी करोगी, मैं तो इनको कहूंगा भगवान को अपना साजन बना ले तो बहुत अच्छा होगा। फिर भी यदि इनकी इच्छा है तो देखिए समाज वाले तो ये बोलते ही हैं, यार ये ऐसी बात होती है कि लड़की बड़ी हो रही हो तो बोला ही जाता है कि भैया तो इसकी शादी करो, निर्णय करो कुछ। लेकिन यदि ये ईश्वरीय मार्ग पर चल रही है तो इसे ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करके परमात्मा से अपना सच्चा नाता जोड़ना चाहिए, जो इसको बहुत सुख मिलेगा, अच्छे वाइब्रेशन ये क्रिएट करे, और विशेष रूप से ये कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इस तरह की फीलिंग ये दिन में 5 बार करे तो जो इसका फ्यूचर होगा वो आप ही हो जाएगा।
मान लीजिए विद्यालय से नहीं जुड़ी हुई हैं प्रता जी, कई ऐसी अब कामकाजी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि भाई अपने पेरेंट्स, हो सकता है कि अकेली बेटी भी हो, लिखा तो इन्होंने नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स को भी संभालें, कामकाज भी करें, स्वतंत्र रहें, ठीक है यदि संबंध होता है तो अच्छे स्थान पे जहां मुझे भी खुशी हो, सामने वाले को भी खुशी हो, जब तक नहीं है देन इट्स ओके, लेकिन ये जो समाज वाले बोलते हैं यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी रहती है।
देखिए समाज वाले तो बोलेंगे ही क्योंकि वैसी व्यवस्था है, कोई व्यक्ति एक यंग लड़की को अपने घर में रखना नहीं चाहता, वो ये भी कहते हैं इसमें कुछ कमी है या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हम करा दें,
लेकिन मेरे पेरेंट्स तो खुश हैं।
लेकिन अगर पेरेंट्स खुश हैं और ये उनकी सेवा भी करना चाहती है और ये भी खुश है तो फिर इनको और किसी की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर देना चाहिए और खुद भी अपने से सहमत रहना चाहिए इन चीजों में, क्योंकि जो व्यक्ति स्ट्रांग विल के नहीं होते हैं वो कंफ्यूज जल्दी होते हैं, लोग ये कह रहे, वो ये कह रहा, मुझे ये करना है, क्या करूं। लेकिन अपने एक निर्णय में इनको स्ट्रांग भी रहना चाहिए और जो कुछ इन्हें करना है वो करना है, जब माँ बाप सहमत हैं तो फिर और किसी कोई बात नहीं।
बिल्कुल, मतलब अपने आप को अपने निर्णय पे हम बहुत ज्यादा दृढ़ रहें, लोगों की बातों पे उतना ज्यादा ध्यान ना दें, और जैसे आपने कहा है यदि परमात्मा को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी, हम भी बारात में शामिल हो
जाएंगे तो हम सबको मौका मिलेगा।
जी जी दादा जी, अगला हमारे पास जो मेल है जासमीन का है, ये कहती हैं ओम शांति सूर्य भाई जी, मैं जासमीन हूँ, भटिंडा से हूँ, मैं एमटेक की स्टूडेंट हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे काफी टाइम से अपनी स्टडीज में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा एमटेक जो थीसिस है वो क्लियर नहीं हो रहा है जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी हूँ। फिर एक दिन मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो उसमें आप पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बता रहे थे, तो मैंने भी वो करना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगा। और उसके थोड़े दिन के बाद फिर से ऐसी स्थिति जैसे पहले थी वैसी हो गई कि मुझे फिर से परेशानी होने लगी, डर लगने लगा कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, स्टडीज मेरी कंप्लीट होंगी या नहीं होंगी, थीसिस मेरा फिर से पास होगा या नहीं होगा, तो ये सारी परेशानी फिर से मुझे होने लगी है। कृपया बताएं कि मैं कैसे इसे क्लियर करूं, कैसे अपने मन की स्थिति को भी शांत और सहज रखूं।
नहीं, होपफुली ये बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए, मनुष्य को ये होता ही है, और एक स्टूडेंट लाइफ में और वो भी एमटेक, तो डर भी लगता है कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, समाज का भी डर रहता है, लोग क्या कहें, अपने फ्यूचर का भी डर रहता है। भाई एमटेक के बाद तो एक बहुत अच्छा कैरियर बनेगा ना, तो मनुष्य को इंतजार तो रहती है जल्दी हो, परिवारों में भी खुशहाली का माहौल होगा उससे, और इनके अंदर की भी निराशा दूर होगी। मैं इन्हें राय दूंगा जैसे आज तक बहुतों के अनुभव हैं, ये कि 21 दिन की योग भट्टी अवश्य करें। योग भट्टी हम कहते हैं कि 21 दिन एक घंटा रोज योग करेंगे। दो स्वमान ये याद करेंगे, उससे पहले मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बस ये करने से इनके मार्ग में जो बाधाएं हैं, कोई भी चीज जो रुकावट डाल रही हो, सूक्ष्म स्थूल, वो दूर हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहूंगा इनको योग अभ्यास बहुत अच्छा करना है, एकाग्रता के साथ मन को भटकाए बिना। इस पे ध्यान दें कि जैसे और ये तैयारी करती हैं, भाई अच्छी तैयारी करेंगी, जो थेसिस लिखनी है वो बहुत अच्छी करेंगी, ऐसे ये एक घंटा बिल्कुल अपने को समर्पित करें योग अभ्यास के लिए। मुझे बिल्कुल एकाग्रचित होकर अच्छा योग अभ्यास कर लेना है, तो इससे इनका मार्ग खुल जाएगा। और सवेरे उठते ही 7 बार ये पुनः वही संकल्प करें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और अगर इन्हें भय लगता भी है, देखिए तैयारी तो इन्होंने बहुत करी ली है पर अभ्यास तो कर ली है, तो 108 बार या 51 टाइम ये रोज लिख लें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, इससे इनके अंदर का भय समाप्त हो जाएगा। और क्योंकि ये भय बहुत बुरी चीज है और ये होता है ऐसे केसेस में,
पर ऐसा हो कि थीसिस हम देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया,
तो भी निगेटिव फीलिंग्स होती है, निगेटिव फीलिंग भी होती है, पता नहीं कब होगा। बिल्कुल ये सत्य है अपनी बातों में, ऐसा करेंगी तो गॉडली ब्लेसिंग्स भी इन्हें मिलेंगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सफल होंगे।
आज की तमाम चर्चाओं के लिए व्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जय और पराजय ये तो जीवन में लगा ही रहता है, सफलता असफलता ये जीवन का एक नाम है। कहते हैं हमेशा सफल नहीं होता व्यक्ति, असफल भी होता है और असफलता भी उसे बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन कई बार असफलताएं हम पर हावी हो जाती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकने लगती हैं, निराशा हमारे अंदर भर देती हैं। लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने अंदर शांति और धीरज बनाए रखें, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, और मेडिटेशन इसमें सचमुच बहुत ज़्यादा मदद करता है। चाहे जो केसेस हमने ली वो, या फिर जहाँ से हमने शुरुआत की थी वो, एक दृष्टिहीन बच्चा जब इतना अच्छा न्यूज़ रीडर बन सकता है केवल 11 वर्ष की उम्र में, अपने हौसले के आधार पे, अपने जज्बे के आधार पे, तो हम भी क्यों नहीं ऐसा कर सकते। भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है ना, और विशेष करके जब हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है उनमें, तो कभी भी कमेंट्स ना करें बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं। उन्हें आगे बढ़ने में यदि हम मदद करते हैं तो सचमुच हमारे दिल को भी बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। मुझे याद आता है एक दृष्टिहीन व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर में जाया करता था। अब कुछ लोग ऐसे थे जो रोज देखते थे और नाक भौं सिकोड़ते थे कि ये दृष्टिहीन है फिर भी रोज मंदिर में कैसे चला आता है, क्या मतलब है इसका मंदिर में आने का। एक दिन किसी ने कह ही दिया कि तुम दृष्टिहीन होते हुए भी मंदिर में आते हो, तुम भगवान को तो देख नहीं सकते हो। तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, उसने कहा कि मैं भगवान को भले ही नहीं देख सकता हूँ लेकिन भगवान तो मुझे देखते हैं ना, मैं यहाँ इसलिए आता हूँ ताकि उनकी शक्ति मुझे प्राप्त हो, ताकि मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकूं। तो ऐसे लोग अंदर से बहुत ज्यादा सशक्त होते हैं मित्रों, आवश्यकता बाहरी थोड़े सहयोग की भी होती है। तो हमारे आसपास यदि ऐसे लोग हैं हम जरूर उनकी मदद करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, वो भी हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, हिस्सा हैं। यदि वो आगे बढ़ेंगे, खुश होंगे, हमें भी बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और समाज में एक सुंदर माहौल भी बनेगा। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः समाधान कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।